हरे कृष्णा। तो आज हम कुंती महारानी की प्रार्थना में ये पांचवी प्रार्थना है जिसमें वह भगवान को के रूप का वर्णन करके उनको प्रणाम कर रही है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि साधारण लोग यदि भगवान के रूप को नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए भगवान का विग्रह रूप है। तो मायावाद के प्रचार के कारण बहुत लोगों में ऐसी धारणा होती है कि विग्रहों की जो पूजा है वो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। पहले आप रूप की पूजा करो और बाद में आप रूप के परे चले जाओ, ऐसा भाव होता है। पर वास्तव में सबसे पहले शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का एक वास्तविक रूप है और उस रूप को जब यहां पे प्रस्तुत करते हैं तो उस रूप के कोई परे नहीं जाना होता है। जरूर एक चीज होती है कि पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि जब ध्यान कर रहे होते तो दो प्रकार का ध्यान होता है, सवितर्क समाधि, सवितर्क ध्यान और सविचार ध्यान। सवितर्क ध्यान मतलब कि बाहर कोई वस्तु उपयोग करके ध्यान करते हैं, और सविचार ध्यान मतलब जब अंतरंग मन ही मन ध्यान कर लेते हैं। मतलब जैसे भगवद गीता में दो जगह पे अलग अलग चीजों पे केंद्र करने के लिए बोला है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ऐसे बताया गया। कभी कभी कहते हैं कि जब योगी ध्यान कर रहे हैं तो दोनों जो आंखें हैं उनके बीच में भ्रु में ध्यान करना चाहिए। दूसरी जगह पे बताया गया है नासिका ग्रमसुम, ऐसे बताया गया कि मेरा छठे अध्याय में जब ध्यान योग बताया जा रहा है, पांचवें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आप भ्रु के बीच में ध्यान करो, और छठे अध्याय में बताते हैं कि आप नासिका ग्रमसम दिशश्चानवलोकयन, और तेरहवें श्लोक में बोलते हैं कि आप नाक के अग्र पे ध्यान करो। अभी नाक के अग्र पे क्या विशेष ध्यान करने के लिए? तो वास्तव में कोई नाक के अग्र विशेष बात नहीं है, पर मन को केंद्र करना विशेष है, मन को एक जगह पे स्थिर करना। तो योग में यह बताया गया है कि यह एक प्राथमिक स्तर है कि व्यक्ति को एक बाह्य वस्तु चाहिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए, और बाद में जब और प्रगतिशील हो जाएगा तो उसको कहते हैं सविचार ध्यान। ये पतंजलि बताते हैं कि तभी व्यक्ति को बाहर कोई वस्तु ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर वो विचार पर ध्यान कर लेता है। कि मान लीजिए हम बाहर भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं और फिर बाद में जब हम भगवान के विग्रहों के बार बार ध्यान करके मन में वो चित्र लग जाता है तो मन में हम विचार करते हैं, तो बाहर वो विग्रहों पे चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों संप्रज्ञात समाधि के विभाग है। उसके पहले परे असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि मतलब कि व्यक्ति विचार नहीं करता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं संकल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं जैसे भगवान उनका नीला वर्ण है, कमल पुष्प पहनते हैं, तो मैं संकल्पना करने का प्रयास कर रहा हूं। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी कल्पना नहीं करते हैं। सेवोन मुख्य ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा, और तभी अपने आप भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये तीन स्तर है। एक है कि हम इंद्रियों के स्तर पे भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, दूसरा है कि हम मन के स्तर पे भगवान के रूप को एक तरह से कल्पना करके उस चिंतन करते हैं, और तीसरे स्तर पे न इंद्रियों का कुछ कार्य होता है न मन का कुछ कार्य होता है, आत्मा के स्तर पे ही प्रेम के कारण भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाता है। तो दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है? दूसरा स्तर मतलब हम मन में कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अनुचित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि चिंतन कर रहे हैं कि हाँ आज मैं दर्शन देखा था, कैसा दर्शन था, कौन से रंग का वस्त्र था, भगवान के कौन से मालाएं थे उनके हृदय में, उनके गले में थे, तो ये ऐसा कल्पना करते हैं, ये अच्छा है, शुद्धिकरण होगा क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम कर रहे हैं। पर इसके परे जब शुद्ध भक्त हो जाता है तो स्वयमेव स्फुरत्यदा अपने आप भगवान का जो चित्र है, भगवान का जो रूप है, भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। तो ये सत्य है कि ये प्रगतिशील स्तर है। जो बहुत प्रगतिशील भक्त है उनको भगवान के लिए चिंतन करने के लिए, भगवान पर चिंतन करने के लिए विग्रहों की जरूरत नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि विग्रह झूठे हैं या विग्रह केवल एक औजार है जिसको इस्तेमाल करके हम इस भौतिक जगत के परे जाते हैं। नहीं, जो रूप हम पहले बाहर से देखते हैं विग्रहों के रूप में वही रूप अंदर प्रकट होता है, और यह दोनों एक तरह से शाश्वत है आध्यात्मिक जगत में। तो जो प्रगतिशील भक्त हो जाते हैं वो विग्रहों पे चिंतन किए बिना भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पर हमें कल प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मैं उस स्तर पे ऑलरेडी पहुंच गया हूं, क्योंकि अभी हम आंखें बंद कर ले गए तो क्रिकेट मूवीज आदि सब की कल्पना मन में आ जाएगी। भगवान की कल्पना शायद ही आती है मन में, भगवान के विचार ज्यादा आते नहीं मन में। तो इसीलिए विग्रहों पर चिंतन बहुत जरूरी है। और जैसे कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को सामने देख के प्रार्थना कर रही है, वैसे हम भगवान के विग्रहों के सामने आके प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे भगवान की तुलना पंकज से की गई है उनके शरीर के, क्योंकि पंकज का लक्षण होता है कि वह भले ही कीचड़ में रहता है तो भी उसमें गंदगी नहीं लगती है। तो भगवान आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं। भौतिक जगत ये सारे कीचड़ से बना हुआ है। कीचड़ क्या है? हम सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य है, और उसके कारण बहुत से कार्य होते हैं इस भौतिक जगत में। पर भगवान इस कीचड़ से कभी मलिन नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो भगवान की कई बार तुलना जो कमल से की जाती है, तो वैज्ञानिकों भी को ये पता है कि कमल का कुछ विशेष गुण होता है कि अगर उस पर गंदगी डालते हैं तो गंदगी चली जाती है और कमल वैसे ही रहता है। तो इसीलिए बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें जब बनाते हैं वो, तो उसका जो दीवारें होती है वो एक स्पेशल प्रकार की तंत्रज्ञान से बनाते हैं, और उसका नाम है लोटसैंड टेक्नोलॉजी। लोटसैंड टेक्नोलॉजी क्या है? ये लोटसैंड कहते हैं उसको, क्योंकि क्या है कि उन्होंने, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी इमारतें 20 30 40 50 मंजिल की है, तो अभी सामने से लोग आएंगे तो जैसे दिन महीने जाएंगे साल जाएंगे गंदा हो जाएगा वो, तो अभी 50 मंजिल ऊपर करके बाहर से सीढ़ी पे कौन उसको साफ करेगा, सफाई कैसे करेगी उसकी। तो फिर वो क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने संशोधन किया कि ये कमल का पुष्प कैसे होता है कि उस पे गंदगी रहती नहीं है, तो वो कमल के पुष्प का जो पन्ना होता है, पुष्प होता है, उसमें जो रसायन होते हैं वो निकाल के वो जो बिल्डिंग को पेंट करते हैं उस पेंट में डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जब उसको बिल्डिंग को सफाई करना है तो सिर्फ ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो जो मिट्टी होती है जो गंदगी होती है वो उसको चिपकती नहीं है, क्योंकि लोटसैंड फसाइड है उसका, तो सब कुछ आसानी से सफाई हो जाती है। तो यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि जो कमल है, कमल वह किसी चीज से दूषित नहीं होता है। तो उसी तरह से भगवान जो है भौतिक जगत में आते हैं पर कभी दूषित नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी तुलना पंकज से की गई है। तो हम सारांश से अभी ये जो कुंती महारानी की 26 प्रार्थनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुंती महारानी क्या, उनका भाव क्या है वह समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं पिछले हफ्ते बता रहा था कि ये जो प्रार्थनाएं हैं यह भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं। इसके पहले दो प्रार्थनाएं हैं उत्तरा और अर्जुन की, तो 18वें श्लोक से चालू होते हैं और 43वें श्लोक तक है ये। तो 26 श्लोक है, शायद हमारे लिए एक श्लोक के लिए एक मिनट है, तो हम कितना चर्चा कर पाएंगे हम देखेंगे। पर इस प्रार्थनाएं के 5 विभाग हैं। सबसे पहले जो 18वें श्लोक से अभी जो विभाग चल रहा है उसमें कुंती महारानी भगवान को नमन कर रही है, उनको प्रणाम कर रही है 18वें श्लोक से ये 22वें श्लोक तक। और फिर 23वें श्लोक से 27वें श्लोक तक वो बताती है कि कैसे प्रभु आपने मेरे जीवन में मेरा संरक्षण किया है। तो सबसे पहले कोई बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति आता है तो उसका थोड़ा गुणगान होता है, तो उसका गुणगान करते हैं। और फिर अगर हमें किसी का परिचय देना है तो कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं तो अगर किसी से हम परिचित करना है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, और फिर अगर हमारा उनसे कुछ परिचय है, संबंध है, तो हम वो संबंध भी बोलते हैं कि मैं इनसे पहले बार यहाँ पे मिला था और मैं इसे बहुत प्रेरित हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो उसी तरह से 23 से 27 श्लोक में बता रही है कि कैसे भगवान ने मेरे जीवन में मेरा संरक्षण किया है। और फिर 28वें श्लोक से 31वें श्लोक तक वो बता रही है कि भले ही भगवान ने बहुत बार मेरा संरक्षण किया है पर ये भगवान की लीलाएं जो है समझना बड़ा मुश्किल है, कोई समझ नहीं सकता है। मैं देखा है कि उन्होंने संरक्षण किया है पर कैसे कार्य करते हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो कहती है कि बाद में 32वें श्लोक से 36वें श्लोक तक कि भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट क्यों होते हैं। तो भगवान ऐसे अगर बहुत ही विचित्र लीलाएं करते हैं, विचित्र है मतलब विडंबनीय, जो समझने के परे ऐसी लीला करते हैं, अचिंत्य लीलाएं करते हैं, वो इस भौतिक जगत में प्रकट क्यों होते हैं, उसके अलग अलग कारण बताते हैं। और फिर 37वें श्लोक से 43वें श्लोक तक वे भगवान से संरक्षण के लिए प्रार्थना करती है। पर वो क्या संरक्षण चाहती है? वो संरक्षण चाहती है शारीरिक रूप में नहीं, पर कि हमारे कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना का संरक्षण हो। तो इस तरह से जो प्रार्थना है, और इसका जो अंत है 44वें श्लोक में देखे गए कि प्रार्थना का परिणाम क्या होता है, वो भगवान के उसकी प्रतिक्रिया से हम देख सकते हैं। तो कुंती महारानी शुरू करते 18वें श्लोक से कि साधारणतया कोई भी आदरणीय व्यक्ति यदि आता है तो उसको पहले प्रणाम करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। हे प्रभो, आप सारे प्रकृति के परे सर्वोच्च ईश्वर हो और आप सबके स्वामी हो, पर आप को कोई समझ नहीं सकता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कई बार अगर हम सिर्फ वो प्रार्थनाओं का अर्थ पढ़ेंगे शब्दशः, तो जो भाव है कि इस संदर्भ में किस भाव के साथ कुंती महारानी प्रार्थना अर्पण कर रही है, वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम कि सब उस आपको देख नहीं सकते, आप अंदर हो बाहर हो, ऐसे क्यों बता रही है? क्योंकि उन्होंने अभी देखा था कि भगवान कृष्ण उनके साथ में थे, पर फिर भी क्या हुआ, वही भगवान ने परीक्षित के गर्भ में अंदर जाकर क्या किया, उत्तरा के गर्भ में अंदर जाकर परीक्षित का संरक्षण किया। तो आप अंदर भी हो बाहर भी हो, आप अंदर हो बाहर हो, फिर भी अलक्ष्यम, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। तो फिर क्यों समझ नहीं पाते हैं आपको? तो अगले श्लोक में बताती है, माया जवनी का छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कहते हैं माया जवनी का छन्नम, माया के द्वारा आवृत हो गए हैं। तो फिर कौन आवृत हुए? भगवान आवृत हुए हैं। भगवान को कैसे माया ढक सकती है? नहीं, वो वास्तव में हम आवृत हुए हैं। और इसके लिए विश्वनाथ जी के ठाकुर उदाहरण देते हैं, यही उदाहरण नटस्याकृते भीर विचेषितो, कुछ गजेंद्र की प्रार्थनाएं में भी आता है, चौथे अध्याय 8वें स्कंद के। तो वहां पे बताते हैं वो कि चक्रवर्ती बात बताते कि जैसे कोई भरतनाट्यम का नृत्य कर रहा है, तो देखने को नृत्य अच्छा लगता है, कोई हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, मुंह पे अच्छा अलग अलग भावनाएं आ रही है, पर अगर किसी को पहले से पता है कि ये कौन सी लीला दर्शाई जा रही है, तो फिर वो जो नृत्य है उसका असली अर्थ समझ में आता है, नहीं तो फिर केवल वो नृत्य रहता है। तो उसी तरह से वो कहते हैं, आपकी लीला तो हम देख रहे हैं, भगवान कहेंगे तुम कैसे समझ नहीं सकते मुझे, मैंने क्या कर रहे हो मैं देख रहा हूं। हाँ, पर हम जो देख रहे हैं वो कैसे है, वो एक नृत्य करने वाला जो नट है, नाटिका है, वो जैसे नृत्य कर रही है, कार्य कर रही वो है, पर उसकी पार्श्वभूमि क्या है वो समझेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर ये कौन समझ सकता है? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। हे प्रभो, वो कहते हैं कि वास्तव में परमहंस ये समझने का प्रयास करते हैं, विधानार्थं, वो परमहंस समझने के प्रयास करते हैं और वो भी उनको समझना मुश्किल जाता है। तो चक्रवर्ती बात बताते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, पिछले अध्याय में श्लोक आया था कि आत्मा राम जो है परमहंस है, वह भी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो वो समझने में यत्न करते हैं, कभी यशस्वी होते हैं, कभी यशस्वी नहीं होते हैं। तो कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं कैसे समझ पाऊंगी, तो आप मेरे सामने थे पर फिर भी आप गर्भ के अंदर जाके उन्होंने आपने संरक्षण किया, तो आपने यहां पे परीक्षित का संरक्षण किया। तो यहां पे चक्रवर्ती पाद बताते, तीन उनके विडंबनाएं बताते भगवान जो कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि आपने व्रत लिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर फिर भी आपने शस्त्र उठा लिया। तो आपने यत्न किया था कि आप हमेशा जो नेक लोग हैं उनका संरक्षण करेंगे, तो भीष्म इतने नेक थे पर उनका विनाश आपके द्वारा ही हो गया। आपने यहां पे जो उत्तरा के घर में परीक्षित है उसका संरक्षण किया, पर आपने जो द्रौपदी और सुभद्रा है उनके पुत्र का संरक्षण नहीं किया। तो आप कब क्या करोगे ये समझना हमारे परे है, हम समझ नहीं सकते हैं इसको। और फिर वो बताते हैं कि वास्तव में आप मुझसे बहुत संबंधित हो। तो अभी वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना आ रही, तो कल का श्लोक जो था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम बताते हैं कि यहाँ पे भगवान का संबोधन जो हो रहा है कृष्णाय वासुदेवाय, तो आप परम सर्वाकृष्ट भगवान हो पर आप वसुदेव के पुत्र के रूप में आए हो, और देवकी नंदनाय च, तो यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पे देवकी का नाम है फिर नंद महाराज का नाम है, पर दो महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे नहीं है, गोपियां राधा रानी का नाम नहीं है और यशोदा माई का नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये गोपियों का प्रेम बहुत रहस्यमय है, इसीलिए उसका उल्लेख एक छन्न पद्धति से हुआ है, गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान का नाम गोविंद कब पड़ा? जब वो कैशोर युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, जो गोवर्धन लीला अगर आप देखते हैं भागवतम के दशम स्कंद के 25वें 26वां जो अध्याय है वो गोवर्धन लीला का है, 25वां 26वां 27वां अध्याय वरुण का, नंद महाराज का वरुण से जो उनको बचाया गया है, 28वां अध्याय जो है ब्राह्मण की यज्ञ पत्नियों के बारे में है, और फिर उसके बाद में 29 से 33 जो अध्याय है वो रासपंच अध्याय है। तो ये गोवर्धन लीला के बाद जो भगवान की लीला हुई है रासलीला से, तो गोविंद इस नाम से गोपियां और रासलीला का संबोधन किया गया है, और फिर यशोदा माई का उल्लेख बाद में करने वाली है कुंती महारानी। फिर वो कहती है कि आपने कई बार मेरा संरक्षण किया है और सबका भी संरक्षण, तो आज का जो श्लोक आता है कि आप इस भौतिक आपकी लीला में समझ नहीं सकती, पर मैं ये जानती हूं कि आपकी लीलाएं जो है वह इस भौतिक जगत के स्वार्थ या पक्षपात से दूषित नहीं है, आपकी जो लीलाएं है वह निर्मल है। तो फिर वो जो निर्मल लीलाएं हैं हमें उनका कुछ वर्णन करते हैं, तो अगले श्लोक कल का जो श्लोक आएगा वो कहते हैं कि कैसे प्रभु आपने कई बार देवकी का संरक्षण किया था, तरह से आपने मेरा भी संरक्षण किया है। ऋषिकेश खलेन देवकी कमसेन रुधात चिरम शुचार पिता विमोचिता हम च सह आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। कि आपने कई बार मेरा संरक्षण किया है। अभी कुंती महारानी का जो भागवतम जो ग्रंथ है उसमें अगर हमें समझना है अच्छी तरह से, तो महाभारत की पार्श्वभूमि अगर होती है तो ये जो शुद्ध भक्ति का लक्षण हम समझ सकते हैं। कुंती महारानी का अगर हम जीवन देखते हैं तो बहुत से विपत्तियों से भरा हुआ था, और उसका वर्णन महाभारत में आता है विस्तारित रूप से। तो वो कहते हैं कि आपने इतनी बार मेरा संरक्षण किया, फिर उसके बाद में बताते हैं विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान अशत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधे अनेक महारथाश्रुत द्रोण्यास्त्रुत चास्महरे विरक्षिता चास्महरे विरक्षिता। कि आपने अनेक पद्धतियों से हम सबका संरक्षण किया है, हम सबका आपने संरक्षण किया है। तो कुंती महारानी की एक विशेषता थी कि वो हमेशा बहुत सत्यवान थी, वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी, यहां तक कि उनके जो वचन होते थे वो भी कभी झूठ नहीं निकलते थे। तो इसीलिए जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए सब पांडव गए थे, जो पांडव पहले वाराणाव्रत में उनको जलाने का प्रयास किया गया तो वहां से जंगल में चले गए, जंगल में जब रह रहे थे तो उसके बाद में वे आ गए एक चक्र में जहां पे भीम ने बकासुर का वध किया, और फिर बाद में वो वहां से निकल पड़े तो वहां के ब्राह्मण का रूप धारण किया था। तो ब्राह्मण का रूप जब धारण करके वो आ रहे थे तो तभी उन्होंने देखा कि कई ब्राह्मण किसी बड़ी संख्या में कहीं जा रहे हैं। उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि वास्तव में हम जा रहे हैं द्रुपद राजा के दरबार में, और वहां पे स्वयंवर होने वाला है, और स्वयंवर के समय बहुत दान मिलेगा तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि ये पांडव के वस्त्र थोड़े पुराने हो गए थे, फट गए थे थोड़े बहुत, आप भी चलो आपको भी बहुत दान मिल जाएगा। और फिर एक ब्राह्मण ने भीम और अर्जुन की ओर देखा, आपका शरीर भी बहुत बलवान है, आप चाहे तो आप स्वयंवर में भाग ले सकते हो। तो हंसी मजाक में बोल रहे थे, तो बाद में ये सब निकल पड़े। और जब तो पांडवों ने पहले से ही द्रौपदी के बारे में सुना था, और फिर व्यासदेव बार बार उनको मार्गदर्शन करने के लिए जंगल में आते थे। तो व्यासदेव ने भागवतम लिखा है, पर व्यासदेव भागवतम में भी भागवतम में जैसे प्रवेश करते चौथे अध्याय में पांचवी छठे अध्याय पहले स्कंद के, वैसे ही महाभारत में बार बार वो प्रवेश करते, उन्होंने महाभारत लिखा है। तो फिर वो भी बताते हैं कि आप जरूर जाओ पांचाल देश में। जब वहां पर पहुंच जाते हैं वो, तो ये द्रुपद महाराज की बहुत इच्छा होती है कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह अर्जुन से हो जाए। और वास्तव में उसके पहले क्या होता है कि क्षत्रियों की विचारधारा जो होती है वो विचित्र होती है, हम समझ नहीं सकते आसानी से। तो वास्तव में जब द्रोण की जब शिक्षा हो गई, द्रोण ने शिक्षण दिया पांडवों को, तो पांडव और कौरव ने कहा कि आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, आप उसको गिरफ्तार करके ले आओ। तो दोनों पांडव और कौरव साथ में जाने लग गए। तो अर्जुन ने कहा रुको, आप बच जाओ, पहले कौरव को जाने दो। अर्जुन जानते थे कि कौरव जाके हार के आ जाएंगे, फिर हम जाके उनको हरा देंगे। तो कौरव बड़े गर्व से चले गए और भले ही कर्ण द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कर्ण भी उनके साथ गए, पर द्रुपद महाराज ने अपनी शक्ति से उनको हरा दिया और भगा दिया। और फिर पांडव सिर्फ अकेले गए, पांच, उनके हाथ कोई सेना भी नहीं थी, पर पांच पांडव गए और उन्होंने द्रुपद सबको हरा दिया। और तभी जो अर्जुन की जो शक्ति देखी, प्रतिभा देखी, धैर्य देखा, तो उससे द्रुपद महाराज बड़े आकर्षित हो गए और उन्होंने सोचा कि मुझे ये जो ऐसा योद्धा है मुझे मेरे दामाद के रूप में चाहिए। और फिर बाद में बड़ा प्रसंग हो गया कि तो भले ही अर्जुन ने ही द्रुपद को हराया, अर्जुन ने ही द्रुपद को गिरफ्तार किया और द्रोणाचार्य के पास ले गए, पर जो द्रुपद महाराज थे उनका क्रोध अर्जुन की ओर नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो एक निमित्त है, वास्तव में भेजा किसने, द्रोणाचार्य ने भेजा। तो उसके बाद में वो सारा जो उसमें द्रोणाचार्य और उनका जो द्वंद्व था उसका हल हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी तुम्हारा राज्य मेरा हो गया है, पर मैं तुम्हें आधा राज्य दान में देता हूँ, आप राज लेके चले जाओ। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। तो फिर उसके बाद में द्रुपद महाराज ने बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र और एक पुत्री चाहिए। जो पुत्र है दृष्टद्युम्न, वो क्या, वो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और पुत्र मुझे ऐसे चाहिए जो अर्जुन की पत्नी बनेगी। और फिर जब ऐसे कर रहे थे वो, तो उनको समाचार मिला कि वारणावर्त में अग्नि में पांचों पांडव जल के मृत्यु हो गई। बड़े हताश हो गए वो, कहते कि वास्तव में तो मुझे वर मिला है कि मेरी जो पुत्री है वह अर्जुन की पत्नी बनेगी, तो कैसे असंभव हो सकता है, ये तो जरूर सत्य होगा ही है। फिर वो सोचते जरूर ये पांडव कहीं छिपे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी वो स्वयंवर में, और जानते थे कि ये शर्त अर्जुन ही पूरा कर पाएंगे, और एक दो योद्धा और हो सकते हैं जो थोड़े पास में आ सकते हैं, पर अर्जुन जरूर पूरा कर पाएंगे। और अर्जुन पूरा कर पाएंगे इसीलिए वो इस आशा से उन्होंने शर्त रखी थी कि अर्जुन वहां पे आ जाएंगे। और फिर जब उनका युद्ध का समय, जब स्वयंवर का समय आ गया, तो कोई भी क्षत्रिय उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। तो दुर्योधन आया, दुर्योधन ने भी अपना, तो वहां पे सब यादव भी थे, कृष्ण थे, बलराम थे, पर उन्होंने कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। विस्तारित प्रसंग है, मैं सारे प्रसंग में यहाँ पे नहीं जाऊंगा कि हम कुंती महारानी पे केंद्रित कर रहे हैं। तो फिर तभी क्या हो गया, कोई भी यशस्वी नहीं हुआ। और फिर तभी उसके बाद में द्रुपद महाराज चिंतित हो गए, वे क्या करेंगे। और तभी युधिष्ठिर, अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, युधिष्ठिर ने पहले से ही देखा था कि अर्जुन जो है द्रौपदी की ओर आकर्षित हो गए हैं, तो इजाजत मांग जा सकता हूं मैं, बोला। तो उन्होंने कहा कि जो धौम्य ऋषि है, उनके ऋषि थे, पुरोहित थे, उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लिया और फिर वो जाने लगे। तो अभी तब सब लोग सोचे थे कि ये ब्राह्मण ही है, तो बाकी सब ब्राह्मण वर्ग वहां पे थे वो विचित हो गए, बोले ये क्या कर रहा है, ये ब्राह्मण है जो क्षत्रिय नहीं कर पाए, ये ब्राह्मण कैसे कर पाएगा, वास्तव में ये सब ब्राह्मण लोग को बदनाम कर देगा ये, और ये छोटा ये युवक है काम वासना से मोहित हो गया है। और फिर दूसरे ब्राह्मण लोग कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, देखो इसकी भुजाएं कितनी बलवान है, जरूर ये जो है, जो ये क्षत्रिय लोग बड़े गर्वी होते हैं, क्षत्रिय लोग के गर्व का नाश करके ब्राह्मण कुल का ये गौरव बढ़ाएगा। तो ऐसे भाव से वो उसको प्रोत्साहन कर रहे थे। तो अर्जुन वहां पे आके गए और अर्जुन ने उनसे निवेदन किया कि दृष्टद्युम्न से कहा कि क्या इस स्वयंवर में ब्राह्मणों को सहभागी होना की अनुमति है। तो यहां पे देखे अर्जुन और कर्ण का भेद, कर्ण जानते थे कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, उस समय तक उन्हें पता नहीं था वे कुंती के पुत्र है। तो फिर सीधा वो स्वयंवर में प्रतियोगिता में चले गए, और फिर बाद में दुष्यंत ने उनको, द्रौपदी ने कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, दुष्यंत ने उनको रोक दिया और वो अपमानित हो गए तभी। तो वास्तव में क्षत्रिय है और फिर जो सूत पुत्र है वो नीचे के क्षेत्र है, पर कर्ण जो थे वो सीधा चले गए। पर अभी क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण है, पर अर्जुन की जो संस्कृति है, जो विनम्रता है, वो सीधा स्वयंवर की ओर चले गए। उन्होंने क्या कहा, इजाजत मांगी। और फिर द्रुपद ने देखा ये कौन ब्राह्मण है, बड़ा बलवान लग रहा है, और उन्होंने कहा ब्राह्मण तो हमेशा क्षत्रियों के स्वामी होते हैं, तो जो जिसे ब्राह्मण हमारे लिए आदर है कि ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं, और अगर कोई ब्राह्मण सहभागी होने जरूर सहभागी हो सकता है। तो सब क्षत्रिय देख रहे थे ब्राह्मण क्या कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर सबके सामने आराम से अर्जुन ने उठा लिया धनुष और तीर लगाया, और जो आप जानते हैं प्रतियोगिता जैसे नीचे पानी था, पानी ऊपर चक्र है और चक्र गोल गोल घूम रहा है, और उसके चक्र के भेद से ऊपर एक मछली है और मछली के आंख में मारना है, तो बड़ा मुश्किल था वो और नीचे देखकर। तो फिर अर्जुन ने एक ही तीर मारा और सीधा उसके आंखों में लग गया, और तभी जब आंखों में लग गया तो सब ब्राह्मण जय घोष करने लग गए, और सब जो क्षत्रिय थे उनके मुंह नीचे गिर गए सब। और फिर द्रुपद महाराज थोड़े विस्मित हो गए थे, एक तरह से प्रसन्न भी हो गए कि तो फिर क्या होगा कि द्रौपदी का विवाह ही नहीं होता, तो फिर क्या होता अगर विवाह ही नहीं होगा, तो इसीलिए एक तरह से प्रसन्न हो गए, विवाह तो हो गया। पर वो सोचे कौन है ये उसका पति, मुझे पता नहीं कौन है, क्या ये अर्जुन हो सकता है, उनको हृदय में आशा शायद अर्जुन ही है। पर अर्जुन तो मृत्यु हो गई, तो फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आप जाके माला पहना दो। जैसे माला पहना दी तो तभी सब क्षत्रियों में हाहाकार मच गया, ओके ये द्रुपद ने हम सबको यहाँ पे अपमानित करने के लिए बुलाया है कि हम सब क्षत्रियों को छोड़ के एक ब्राह्मण को उसने अपनी पुत्री दे दी है, हम उसको ऐसे सबक सिखाए गए आज कि पुनः किसी भी स्वयंवर में इस तरह से क्षत्रिय का अपमान नहीं होगा। और सब अपनी तलवार निकाल के आ गए। तो अभी इतने सारे क्षत्रिय थे वो सब एक साथ आ गए, तो द्रुपद महाराज क्या करे समझ में नहीं आया उनको, और उन्हें उनके भी सैनिक थे पर वो इतने महान महारथी वहां पे आ गए, क्या करेंगे। तभी अर्जुन के पास वही धनुर्युद्ध जो धनुष्य था जिससे उन्होंने भेद किया था वही उनके साथ था, और उसके साथ साथ भीम भी वहां पे आ गए। और भीम जब वहां पे आ गए तो वहां पे एक बड़ा साल वृक्ष था, तो तुरंत वो साल वृक्ष अभी क्योंकि ब्राह्मण थे उनका शस्त्र था नहीं, तो शस्त्र तो कुछ चाहिए है, तो इसलिए साल वृक्ष के पास चले गए और उनकी चले गए साल वृक्ष को उखाड़ के निकालेंगे और शस्त्र के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो तभी युधिष्ठिर महादेव रुक लिया है, भीम रुको, अगर तुम इस विशाल वृक्ष को तोड़ोगे सब समझ जाएगा कि तुम भीमी हो। तो इसीलिए आप कृपया इसको आप कोई और साधारण अस्त्र इस्तेमाल करो। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां पे जो पंडाल था, पंडाल का एक ऐसा डंडा जैसे था वो, तो उसको उठा लिया और फिर वो बड़े वो भी बड़ा शस्त्र था, उसे युद्ध करने के लिए तैयार तत्पर हो गए। वो जो तत्पर हो गए तो फिर तभी क्षत्रिय आ गए, और फिर अर्जुन ने सबको अपने तीरों से प्रतिकार कर लिया, और जो साल्व था फिर उसमें भीम में युद्ध हो गया, फिर कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो गया, और कर्ण हार गए एक तरह से, भीम ने भी सालों को उठा के फेंक दिया दूर, और सब क्षत्रिय विस्मित हो गए, उसे लगे कि ग्रोप तो भी चले जाएगा, हमारे हड्डी में चली जाएगी, छोड़ो इसको भी। तो इसीलिए उन्होंने उसको जाने दिया, और फिर पांच पांडव द्रौपदी को साथ लेके चले गए वहां से। और जब जा रहे थे तो द्रुपद महाराज ने कहा दुष्यंत को कि तुम इनके पीछे जाओ, देखो ये कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब ऐसे चल रहा था तभी कृष्ण और बलराम जी देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने पांडव को देखा वो पहचान लिया उन्होंने। अभी हम सोचेंगे कि उस समय पांडव तो इतने प्रसिद्ध है, तो उन्होंने कोई दाढ़ी वगैरह तो नहीं बढ़ाई थी, कुछ नए अलग प्रकार के बाल वगैरह नहीं पहने थे, तो बाकी सब उनको पहचान क्यों नहीं पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो आजकल जो होता है ऐसे सब जगह पे लोगों के फोटो होते हैं, उस समय फोटो नहीं थे, तो इसीलिए 100-200 साल पहले भी अगर कोई राष्ट्र के बड़े नेता होते तो उनको पहचानना मुश्किल होता था क्योंकि ऐसे चित्र नहीं होते थे। पर जो कौरव जो यादव थे कृष्ण और बलराम, उन्होंने देखा देखो ये कृष्ण और अर्जुन ही है, तो बलराम ने देखा हाँ यही कृष्ण अर्जुन है, तो कृष्ण और बलराम जी पांडव के पीछे चले गए, तो वो पीछे गए और उनके पीछे दुष्टुम्न आ गए। और इधर वो जो छोटे से कमरे में रह रहे थे, छोटे से घर में, वहां पे वास कर उनको जो जो भी ब्राह्मण उस प्रतियोगिता के लिए आए थे, उस स्वयंवर के उत्सव के लिए आए थे, तो उन सब के लिए कुछ रहने के लिए जगह इंतजाम किया गया था। जहां पे वो सब रह रहे थे वहां पे कुंती इंतजार कर रही थी कि कब, काफी देर हो गया, सुबह चले गए। तो कुंती महारानी को हमेशा भय क्या होता था कि ये भीम जो है कुछ युद्ध में लग जाएगा, क्योंकि भीम को युद्ध करने के बहुत उत्साह होता है। तो फिर उनको एक तरह से डर होता कि मेरे पांच पुत्र में कुछ खतरा तो ना आ जाए, पर दूसरा डर होता था कि जो भीम है उसका थोड़ा खून गर्म है, वो खुद युद्ध में लग जाएगा, इसलिए भयभीत हो रही थी। तो कुंती महारानी को हमेशा चिंता थी कि क्या होगा अभी मेरे पुत्र का। तो फिर तभी जैसे उनको चरण कमलों का आवाज सुनाई दिया तो वो समझ गए कि मेरे पुत्र आ गए, और युधिष्ठिर ने आके प्रणाम किया। और ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जो होता है वो कुछ पेशा नहीं करते, वो कुछ कमाते नहीं है, वो क्या दान लेते हैं। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कुंती देखो, हम हे माता देखो, हमने आज आपके लिए क्या लाया है। तो कुंती महारानी अपने ही कुंती महारानी अपने विचारों में थी, और अपने विचारों में उसने कहा कि वो अक्षय से संतुष्ट हो गई थी, वो चिंता चली गई थी कि कुछ समस्या तो नहीं है अभी, वो आ गए वापस। उन्होंने कहा जो भी ये लाया है अब साफ साथ में बांट के ले लो। तो अभी जब ये सुना तो युधिष्ठिर महाराज का मुंह गिर गया, और फिर जब पांडव देख रहे थे उनके आंखें बड़े हो गए, क्या है ये जो लाए थे द्रौपदी को साथ में, द्रौपदी को बांट कैसे सकते हैं। और फिर बाद में जब कुंती महारानी बाहर आ गए और देखा कि द्रौपदी आया, फिर उन्होंने सारी कथा बताई, तो कुंती महारानी का चेहरा भी का रंग चला गया। बोले कि ये तो धर्म के अनुसार नहीं है वास्तव में, कि एक पुरुष अनेक पत्नियां हो सकती है, पर अनेक पुरुषों की एक पत्नी नहीं होती है, तो फिर क्या करें उसके बारे में। तो वो चुचा कर दे। तो कुंती महारानी कहे कि आज तक मेरा जो वचन है कभी असत्य नहीं हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर आपने कहा है तो इसको सत्य होना ही चाहिए, पर सत्य कैसे हो सकता है ये। तो सब पांडव सोच रहे थे उस समय तक कि ये जो अर्जुन ने स्वयंवर जीता है तो अर्जुन की पत्नी होगी द्रौपदी। पर जब इस तरह से विचार चालू हो गया तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वास्तव में आपने अगर कहा है तो आपकी वाचन सत्य होगा, तो ये पांचों की पत्नी होगी। तो अभी कृष्ण वहां पे आ गए, और फिर कृष्ण को देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हो गए। फिर कृष्ण को उन्होंने सब कुछ बताया, और कृष्ण ने कहा कि ये जो हो रहा है सब मेरी इच्छा के साथ ही हो रहा है। फिर वो सब कृष्ण आ रहे थे तो तभी पीछे से बाजू में दुष्टुम्न थे, दुष्टुम्न सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण कौन है जिनको मिलने के लिए स्वयं कृष्ण जा रहे हैं, जरूर कोई ये विशेष लोग है ये। और फिर बाद में बड़ा विस्तारित प्रसंग होता है उसके बाद में। यहाँ पर प्रधान कहने के भाव क्या है कि दुष्यंत को पता चल जाता है कि ये पांडव है, और वो वहां पे पांडव को अपने महल में बुला लेते हैं। महल में जब बुला लेते हैं तो पांडव समझ जाते हैं कि ये पांडव है, और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम सब पांचों द्रौपदी से विवाह करेंगे। और जब ऐसा भाव होता है तो द्रौपदी महाराज संकोच में पड़ जाते हैं, और तभी जो व्यास थे वहां पे स्वयं आते हैं। व्यास देव बताते हैं कि वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा से, द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं, और फिर उससे सत्य हो जाता है, पांचों से विवाह हो जाता है। पर यहाँ पे प्रधान बात क्या है कि द्रौपदी कुंती के गुण इतने महान थे कि कुंती जो भी वचन बोलती थी साधारणतः धर्म के नियम के अनुसार नहीं है, पर कुंती के जो वचन थे वो धर्म के नियम से भी ऊंचे थे, और कुंती के वचन को सत्य रखने के लिए जो धर्म के नियम है उसको भी बाजू में रखना पड़े तो रखने के लिए उचित था वहां पे। तो कुंती महारानी याद कर रही है कि ऐसे अनेक संकट आए थे हमारे जीवन में, उन सब संकटों में आपने मुझे बचा लिया है, और फिर अभी जो क्या आ रहा है हमारे जीवन में संकट कि अभी आप जा रहे हो। तो कहते जब भी संकट आता तो आप आ जाते थे, अभी आप ही संकट चला गया इसलिए आप जा रहे हो। तो वो प्रार्थना करते हैं कि अभी ये जो विपत्ति है वापस आ जाए। विपदा संतु तश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। 25वें श्लोक में यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है कि सारी विपत्तियां पुनः आने दो हमारे जीवन में, विपत्तियां जब आएगी तो उससे हम आपका दर्शन कर पाएंगे। तो वास्तव में क्या हम हमारे जीवन में प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान विपत्ति आने दो मेरे जीवन में भी, और विपत्ति आने दो। वास्तव में हमारा स्तर नहीं है ऐसे प्रार्थना करने का, तो क्योंकि विपत्ति आ जाएगी तो हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे अधिकांश रूप से, हम क्या होगा भगवान को दोष देंगे, आप इतनी विपत्तियां क्यों भेज रहे हो मेरे जीवन में। तो इसीलिए वास्तव में ये प्रार्थना का भाव समझना है। अभी प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने भगवान से नहीं कहा कि आप मैं समस्या दो, पर भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद जी ने ऐसी चुनौती ले ली कि बहुत समस्या अपने आप आ गई कि अब अगर अमेरिका में जाके प्रचार करना मतलब विपत्ति के बाद विपत्ति आती गई। तो आज के दिन प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने जो अनेक विपत्तियों का सामना किया। तो वास्तव में प्रभुपाद जी के जीवन से हम क्या देखते हैं कि भगवान की सेवा के लिए अगर हम परेशानी इस्तेमाल करते हैं, परेशानी स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, तो उसमें जो संकट आते हैं वह संकटों के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। तुम्हार से पाए दुख होए जतो से हो तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाए अविद्या दुख। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो आत्मनिवेदन तुआ पद गीत है उसमें कहते हैं कि हे प्रभु आपकी सेवा में जो दुख आते हैं तुम्हार सेवाए दुख होए जतो से हो तो परम सुख। वास्तव में ये परम सुख है। क्यों ये परम सुख है? जैसे कोई माँ होती है, कोई स्त्री होती है, गर्भवती होती है, फिर उसको संतान आता है, तो जो छोटा बालक होता है और बालक से वास्तव में कितनी सारी समस्याएं आती है, कभी भी रात को रोने लगता है, कभी भी कुछ भी करने लगता है, तो उससे वास्तव में वो जीवन जो है शांति चली जाती है। पर क्योंकि वहां पे प्रेम का संबंध है इसीलिए वो माँ के लिए जो भी दुख है अपने बालक का संभालने के लिए उसमें बड़ा आनंद होता है। तो उस तरह से भगवान से भक्त प्रेम करते हैं इसलिए उनके सेवा में जो दुख भी जो है वह भी सुख है। पर इसमें इन दोनों में फर्क है, क्या है कि जब भगवान की सेवा के लिए हम जो दुख लेते हैं वो सेवा सुख दुख परम संपद नाशाए अविद्या दुख। वास्तव में जब भगवान की सेवा के लिए हम दुख लेते हैं तो उससे जो अविद्या है इस भौतिक जगत की वासनाएं भावना है उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भौतिक स्तर पे भी हम दुख स्वीकार करते हैं कभी कभी हमारी जिम्मेदारी के कारण, वो जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है पर उससे वास्तव में डायरेक्टली शुद्धिकरण नहीं होता है। पर भगवान की सेवा के लिए जो चिंता लेते हैं उससे शुद्धिकरण होता है हमारा। तो कुंती महारानी यहाँ पे जो प्रार्थना कर रही है वो प्रार्थना हम हमारी जिम्मेदारी हमारे जीवन में ले सकते हैं कि भगवान के सेवा के लिए समस्या स्वीकार करना। भक्ति में ठाकुर आगे कहते हैं कि आमी तो तोमार तुमी तो अमार की काजा पर धाने पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पेय माने। वो कहते हैं अभी मेरे जीवन में पूर्व इतिहास जो भी मैंने अच्छा किया है बुरा किया है सब कुछ मैं भूल जाऊंगा, पूर्व इतिहास भूली नु सकल मैं सब कुछ भूल के सेवा सुख पेय माने मैं जो सेवा का सुख है उसका आनंद लूंगा। ये पूर्व इतिहास भूलने से इसका मतलब क्या है कि वास्तव में हम भक्ति में आने के पहले जो हमारा जीवन है उसमें हम से आए हमें से कुछ सत्वगुणी जीवन से आए होंगे, कुछ रजोगुणी जीवन से आए गए, कुछ तमोगुणी जीवन से आए होंगे। तो वास्तव में जो पूर्व इतिहास है वह उसका अभी हमारे जीवन से कुछ संबंध नहीं है। से मान लीजिए अगर हम सो रहे थे और सोते समय को बहुत अच्छा सपना आए या बुरा सपना आए तो उड़ जाने के बाद कैसा सपना आया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से जो पूर्व जीवन हमने जिया है उसका वास्तव में हमारे भक्ति जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर हम उसको जैसे कंप्यूटर में होता है कोई जो हमको कुछ नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट कर दो इरेज दबा दो डिलीट हो जाता है सब कुछ मिट जाता है, वैसे ही पूर्व इतिहास भूली नु सकल तो पहले जो भी चीजों में मैंने आनंद लिया था अभी मैं उन सबको भूल जाऊंगा। सेवा सुख पेय माने मैं सेवा में आनंद सेवा के सुख में लग जाऊंगा। और फिर वो कहते हैं आगे क्या है आमी तो तोमार तुमी तो अमार की काजा पर धाने कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो तो इसके अलावा मुझे और क्या धन चाहिए प्रभु। तो यही भाव भी कुंती महारानी के दूसरे श्लोक में आया। वो कहेंगे इसके बाद में कैसे हम ये दो श्लोक के बाद इसका अंत करेंगे, पूरा नहीं ले पाएंगे अभी। वहां पे कुंती महारानी कहते हैं कि क्यों मैं विपत्ति चाहती हूं क्योंकि विपत्ति अगर नहीं होती है संपत्ति होती है तो क्या होता है उससे गर्व आ जाता है और गर्व आ जाता है तो आपको पुकारना मुश्किल हो जाता है। जन्म ईश्वर श्रुत श्रीर ए धमान मद अपमान नैवारत्यभिदा तुम वही त्वाम किंचन गोचरम। तो वो कहते हैं कि जन्म ईश्वर श्रुत श्रीर पांडित्य है संपत्ति है उच्च कुल में जन्म है सौंदर्य है इससे क्या होता है व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं मैं इतना महान हूं तो भगवान की क्या जरूरत है मुझे। इसलिए वह भगवान को पुकार नहीं सकता है। और फिर कहते हैं नमो किंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। वो कहते हैं हे प्रभो आप अकिंचन वित्ताय हो, कि जो व्यक्ति की कोई भौतिक संपत्ति नहीं है आप उनकी संपत्ति हो, आप उनकी संपत्ति हो। इसका मतलब नहीं है कि सबको कंगाल जाना चाहिए, पर भौतिक चीजों को संपत्ति के रूप में नहीं मानना है। बस जो हमारे सेवा के लिए जरूरी है उससे हमारा कर सकते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वास्तव में वो अकिंचन वित्ताय थे, व्यवहारिक रूप से भी उनके पास केवल 40 रुपए थे। और अमेरिका में उस समय, जैसे मैं पहले पिछले हफ्ते बता रहा था कि कैसे उस समय कोई भारतीय थे ही नहीं अमेरिका में, तो राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि उनको पहले से भारत की ओर काफी आकर्षण था, पर वो अमेरिका में बहुत इधर उधर वो युवक के रूप में प्रवास करते थे, पर एक भी भारतीय उनको अमेरिका में नहीं मिला। जो पहला भारतीय उनको मिला वो कौन था, वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो जो पुलिस लोग थे, वो जिन्होंने उनको रोक दिया, वो था पहले भारतीय थे। तो उस समय अमेरिका में कोई भारतीय थे ही नहीं। तो अगर भारतीय नहीं है अमेरिका में तो उसका मतलब क्या है, भारतीय करेंसी भी कोई कीमत नहीं है वहां पे। तो प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे अकिंचन वित्ताय, तो वहां 40 रुपए कुछ कीमत ही नहीं उनकी। तो पहले तो 40 रुपए ज्यादा संपत्ति है नहीं, पर वो 40 रुपए जितनी भी संपत्ति है वो भी उसको यूज नहीं कर सकते। और वास्तव में 1968 में जब प्रभुपाद वापस भारत में आए तो वो तभी एयरप्लेन से आए, और जब एयरप्लेन से जब आए तो फिर वो हवाई अड्डे से वो जहां पे वो रह रहे थे दिल्ली में एक मंदिर था आश्रम वहां पे, तो वहां पे जब आए वो तो तभी उन्होंने वही 40 रुपए निकाले और वो रिक्शा वाले को दिए। तो वास्तव में तो प्रभुपाद जी के पास कुछ भी संपत्ति नहीं थी, पर क्या था, भगवान परम संपत्ति, नमो किंचन वित्ताय, जो भगवान उनकी संपत्ति थी। और क्या हुआ, उनके भक्ति के कारण सब को, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है और उससे भी बड़े हजारों की संख्या में भक्त हैं, वो सब प्रकट हो गए। तो यह भगवान है सबसे बड़ी संपत्ति। और प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं कि जो कुंती महारानी प्रार्थना यहाँ पे अर्पण कर रही है वो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में दर्शाया है कि उन्होंने इतनी सारी विपत्तियां स्वीकार की भगवान की सेवा के लिए। तो एक बार अंतिम प्रसंग याद, प्रभुपाद जी की तबीयत काफी बीमार खराब थे, और तभी क्या प्रभुपाद जी को उस समय बहुत से लोग निवेदन करते थे कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप अमेरिका में आप फ्रांस में आ जाओ, आप साउथ अमेरिका में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। तो प्रभुपाद जी तभी थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, विश्राम के लिए जाने वाले थे, और तभी उनको यूरोप से निवेदन आ गया कि हम रथ यात्रा उत्सव करें, कृपया आप वहां पे आ जाओ। और प्रभुपाद जी तुरंत बोला कि मैं चले जाऊंगा वहां पे। तो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ साथ में थे, और फिर प्रभुपाद जी को बोले थे कि आप मत जाओ। तो उस समय इस्कॉन का न्यूयॉर्क में एक बहुत बहुत भव्य मंदिर था, वो लगभग 11 मंजिल का मंदिर था, पूरा इस्कॉन से ही भरा हुआ था वो। तो ऊपर के मंजिल में प्रभुपाद जी थे और वो एलिवेटर से लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, और लिफ्ट से जब नीचे आ रहे थे तो उनके कुछ 3-4 घनिष्ठ शिष्य थे और वो सब उनके साथ में थे। प्रभुपाद जी बोले थे प्रभुपाद जी आपको विश्राम करना चाहिए, आप यहाँ पे कृपया आप रथ यात्रा के लिए मत जाओ। तो प्रभुपाद जी ने सबके आंखों में देखा और प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष करने का आदर आप मुझसे कभी भी मत छीनना, भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष करने का आदर जो है मुझसे आप कभी भी मत छीनना। सत्स्वरूप महाराज वहीं पे थे और लीलामृत में लिखते हैं कि दीज वर्ड्स बर्नड फॉरएवर इनटू आवर हार्ट, कि हमारे हृदय में एक जल के मानो एक निशाना हो गया शब्दों का, कि भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष करना ये आदर है, और ये आदर जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी मुझसे आप मत छीनो। और प्रभुपाद जी अपने जीवन से यही दिखाया है। तो कई बार हमारे जीवन में आते हैं समस्याएं, सेवाएं आते हैं तो उनको बहुत बोझा लगता है। व्यवहारिक रूप से हो सकता है कि बहुत सी सेवाएं तो कुछ हमें उसको व्यवहारिक रूप से उसको हल करना पड़ेगा, पर जो सेवा है यह वास्तव में आदर है, और उसके संघर्ष करना यह शुद्धिकरण का मार्ग है। और कुंती महारानी जानती है या उनके अनुभव से, इसलिए कह रही है प्रभु कि हमको ये बड़ा राज्य मिल गया है, पर अगर राज्य के कारण आपका संग चला जाए, आपकी भक्ति चली जाए, तो हमको नहीं चाहिए, हमें केवल आप ही चाहिए। नमो किंचन वित्ताय। और जो अंतिम प्रार्थना कुंती महारानी करेगी वो एक प्रार्थना आती है कि जैसे गंगा सागर की ओर जाती है वैसे मेरी चेतना आपके ओर जाए, तो ये मैं अनन्य विषय। तो चक्रवर्ती पाद उदाहरण में बताते हैं कि गंगा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जब जब नदी सागर की ओर जाती है तो उसके दो गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि नदी जो होती है कुछ भी पानी पीछे नहीं रखती है, सिर्फ सोचते हैं कि अरे सारा पानी सागर में चला गया तो क्या होगा मेरा, और तो अंदर से वो स्वयं से कुछ पीछे नहीं रखती है, और दूसरा बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे भी रोकना नहीं है। तो उसे बताते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस इज अनरिजर्व्ड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो अंदर से हम कुछ पीछे नहीं रखते, जितनी क्षमता है जितनी शक्ति उससे सारी सेवा करते हैं, और बाहर से भी समस्या है तो कहीं ना कहीं से तो भी मार्ग निकाल के आगे चलते हैं। और इस प्रार्थना के बाद में कुंती महारानी कहती है वो भगवान का गुणगान करती है, आखिरी जो प्रार्थना है श्री कृष्ण कृष्ण सखा ऋषि भावनी ध्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते। तो वास्तव में वो पहले तो इच्छा करे कि प्रभु आप मत जाओ, पर बाद में सोचती है कि ऐसे कामना नहीं करने चाहिए, आपको जाना है तो आप जाओ पर कृपया मेरे चेतना से मत जाओ, कृपया आप मेरे चेतना में हमेशा विद्यमान रहो। और फिर ये प्रार्थना हो जाती है तो उसके बाद में भगवान क्या कहते हैं, वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं कहते हैं। मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया मंदम जहास वैकुंठो। भगवान एक छोटा सा स्मित करते हैं, और जैसे कि भगवान वास्तव में कुंती महारानी की प्रार्थना से इतना प्रसन्न हो जाते हैं मोहन इव माया, कि माया से वो मानव मोहित हो गए हैं। जैसे कोई बहुत प्रेम व्यक्त करता है तो फिर क्या होता है, इतना भाव भी बोल जाते हैं कि क्या बोले समझ में नहीं आता है। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान कैसी परिस्थिति हो गई है, कुंती महारानी इतना प्रेम व्यक्त किया है, निस्वार्थ प्रेम व्यक्त किया है कि भगवान क्या बोले वो सोच नहीं पाते, इसलिए भगवान कुछ भी नहीं बोलते और स्मित कर देते हैं, और फिर वहां पे प्रार्थना खत्म हो जाती। तो वास्तव में मंदम जहास वैकुंठ, हम जो भी सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ यू कैन जस्ट मेक कृष्णा स्माइल एट यू योर लाइफ विल बिकम परफेक्ट। अगर आप भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान आप पे स्मित करते हैं तो फिर आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो वही कुंती महारानी यहाँ पे करती है, क्या करती है, उनके सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान को प्रसन्न कर देती है। तो हम भी ऐसे कुंती महारानी प्रभुपाद जी इनके उदाहरणों में, इनके पदकमल में चल सकते हैं, और भला आशा रखते हैं कि हम भी भगवान की सेवा करके कि भगवान हम पे प्रसन्न होके हम पे भी स्मित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदी। Thank you very much. Hare Krishna.